मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति नूनम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, मेरे भीतर दीर्घ काल से संचित रहने के कारण सारे धान्य निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। तात्पर्य, जब अन्नाभाव हो तो सरकार को चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित तथा आचार्यों द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन करे। इस प्रकार प्रचुर अन्न उत्पादन होगा और अन्नाभाव तथा दुर्भिक्ष समाप्त हो जाएगा। भगवद गीता में यज्ञ करने के लिए कहा गया है, यज्ञ करने से आकाश में पर्याप्त बादल एकत्र होते हैं जिससे वर्षा होती है। इस तरह कृषि कार्यों की निगरानी हो जाती है। जब पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है तो जनता अन्न खाती है और घरेलू पशुओं को भी प्रचुर घास तथा दाना खाने को मिलता है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि मनुष्य यज्ञ करें तो अन्नाभाव दूर हो जाए। कलयुग में केवल संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। इस श्लोक में योगेन अर्थात स्वीकृत विधियों तथा दृष्टेन अर्थात पूर्ववृत्ति आचार्यों द्वारा दिखाई गई शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई यह सोचता है कि आधुनिक यंत्रों तथा ट्रैक्टरों के द्वारा अन्न उत्पन्न किया जा सकता है तो यह भूल है। यदि कोई रेगिस्तान में जाए और ट्रैक्टर चलाए तो भी अन्न नहीं होगा। हम नाना प्रकार की विधियां अपना सकते हैं किंतु यह जानना नितांत आवश्यक है कि यदि यज्ञ नहीं किए जाएंगे तो पृथ्वी अन्न उत्पन्न करना बंद कर देगी। पृथ्वी ने पहले ही बता दिया था कि अभक्त लोग अन्न का उपभोग कर रहे हैं, इसलिए उसने यज्ञ के लिए अन्न बचा रखा है। अब नास्तिक यह नहीं मानेंगे कि अन्न आध्यात्मिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु वे माने या नहीं, तथ्य तो यही है कि हम यांत्रिक विधि से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। जहां तक स्वीकृत विधि का सवाल है, शास्त्र में कहा गया है कि इस युग के लोग संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे, इससे वे श्री भगवान चैतन्य की पूजा करेंगे जिनका मुखमंडल सुनहरा है और जिनके साथ विश्वास पात्र भक्त रहते हैं, जो सारे संसार में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदुपदेश करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में इस संकीर्तन को प्रचलित करके संसार को बचाया जा सकता है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है कि जो कृष्ण भक्त नहीं है वह चोर है। चोर भौतिक दृष्टि से कितना ही संपन्न क्यों न हो, उसे समुचित पद प्रदान नहीं किया जा सकता। चोर चोर है और वह दंडनीय है। कृष्ण भक्त न होने के कारण लोग चोर बने हैं, फलतः उन्हें प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत दंड मिल रहा है। कोई इसे रोक नहीं सकता, भले ही कितने ही राहत फंड तथा मानवतावादी संस्थाएं क्यों न खोल दी जाएं। जब तक लोग कृष्ण चेतना ग्रहण नहीं करते तब तक अन्नाभाव तथा कष्ट बना रहेगा। भागवत के चौथे स्कंद में प्रसंग ये चल रहा है कि पृथु महाराज ने पृथ्वी माता को गिरफ्तार कर लिया है और पृथु महाराज पृथ्वी माता को दंड देने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी माता ने पर्याप्त मात्रा में अन्न प्रदान नहीं किए हैं प्रजा को, और जब ऐसे धमकी दी गई और जब पृथ्वी महाराज अपना तीर और धनुष लेकर हमला करने वाले थे गोरूपी पृथ्वी माता के ऊपर, तो पृथ्वी माता पृथ्वी महाराज के शरण में गई और कहने लगी कि वास्तव में क्योंकि प्रजा भगवान के भक्त नहीं थी और जो भी पृथ्वी माता सामग्री अन्न जड़ी बूटियां वनस्पतियां इत्यादि प्रदान कर रही थी वे इनका उपयोग उपभोग कर रहे थे और यज्ञ नहीं कर रहे थे, इसलिए पृथ्वी माता ने ये सारे बीज छुपा लिए थे। वास्तव में जो भी सारी जड़ी बूटियां हैं वनस्पति हैं अन्न हैं या संसार में जो भी कुछ है वो सब भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए अर्थात यज्ञ में प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रजा उस समय खास करके महाराज वेन के समय इन सारे पदार्थों का प्रयोग केवल अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे थे और यज्ञ में प्रयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए पृथ्वी माता ने यह उचित समझा कि वो सारे बीजों को छुपा ले। तो इस तरह से अभी पृथ्वी माता पृथ्वी महाराज से कह रही है कि बहुत लंबे समय से मैंने सारे जड़ी बूटियों और अन्नों के बीज छुपा लिए थे, इसलिए वो अभी जीर्ण हो चुके हैं, इसलिए आप समुचित साधन से जो अधिकृत पद्धति है उससे आप इन बीजों को फिर से बाहर निकालिए, फिर से उत्पादन प्रारंभ कीजिए। जैसे कि शास्त्र में बताया है, जैसे पूर्व आचार्यों ने समझाया है उस पद्धति से। इस सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अन्न उत्पादन केवल यज्ञ से हो सकता है, हमारे यंत्रों से नहीं हो सकता। चाहे हम जितना भी परिश्रम क्यों न करें, चाहे हम जितने भी यंत्रों का प्रयोग क्यों न करें, अगर यज्ञ नहीं हो रहे हैं तो फिर अन्न उत्पादन नहीं हो सकता है। और ऐसा क्यों? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि सारे प्राणी अन्न खाकर जीते हैं, अन्न का उत्पादन वर्षा के कारण होता है, वर्षा केवल यज्ञ की वजह से होती है और यज्ञ मतलब अपने निहित कार्य करना, अर्थात जब तक यज्ञ नहीं होते तब तक वर्षा नहीं होगी और जब तक वर्षा नहीं होती है तब तक अन्न का उत्पादन नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन भी हो और मिट्टी भी हो बीज भी हो सब कुछ हो लेकिन पानी नहीं हो तो अन्न का उत्पादन नहीं हो सकता है। ये बहुत सरल सी बात है, लेकिन वर्षा आए कैसे? यज्ञ से। यहां प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भले आजकल के नास्तिक लोग जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते हैं और शास्त्रों के वचनों में विश्वास नहीं करते हैं, भले वो इन चीजों को विश्वास न करें कि यज्ञ करने से वर्षा होती है, परंतु सत्य तो सत्य ही रहता है, चाहे वो इसे विश्वास करें या न करें। अभी वर्षा ठीक ठाक नहीं हो पा रही है, इतने इसलिए आधुनिक मनुष्य समाज में हम इतने अलग अलग पद्धतियों से हम इसका प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो आज प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं आई तो हमें कुछ और साधन प्रयोग करना चाहिए, तो हम बड़े बड़े बंद बनाएंगे डैम, जैसे नर्मदा में अभी बहुत तर्क चल रहा है, वाद चल रहा है उसका, ये सारा प्रोजेक्ट बड़ा वादग्रस्त है। कई लोग सरकार और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि ये तो जनता के कल्याण के लिए है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है और इसलिए यहाँ पर सब सूखा पड़ रहा है और अनाज का उत्पादन न होने की वजह से लोग तड़प रहे हैं, इसलिए हम बड़े बड़े ऐसे बंद बनाएंगे तो लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से करीब करीब 50 सालों से भारतवर्ष में ये बड़े बंद बनाने की पद्धति शुरू हो गई। और इस तरह से जब पानी वहां भर जाता है तो सैकड़ों जो हेक्टेयर एकड़ में पानी का बाढ़ आ जाता है और वहां की जो भूमि है फिर वो पानी से भर जाती है और वहां उत्पादन अन्न का नहीं हो सकता और वहां जो लोग रहते हैं उनको और दूर भेजना पड़ता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि कृत्रिम रूप से ऐसे पानी को रोके जाने से इतने प्रचुर मात्रा में जल को जब रोका जाता है तो आगे पीछे बहुत तकलीफ होती है। जिस तरह से कि अब यहां बंगाल में एक बड़ा बंद बनाया गया है जिसकी वजह से पानी रोका जा रहा है और आगे बांग्लादेश में लोग वहां शिकायत करते हैं कि हमें पानी कम मिल रहा है क्योंकि आपने वहां बंद बना दिया है। तो इस तरह से कोई ना कोई तकलीफ ऐसे कृत्रिम पद्धतियों से होती है। प्राचीन काल में ऐसे नहीं होता था, जिसको जितना पानी चाहिए था अपने खेती के लिए ले लेता था और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था सबके लिए, चाहे कोई नदी के इस तट पे हो या आगे चल के नदी के तट पर हो। लेकिन अब यहां ऐसे हो रहा है कि जो जिसने बंद बना लिया वो पानी ले लेता है और आगे वाले के लिए पानी कम हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भी विवाद चल रहा है, हर एक प्रांत के बीच में, देश के बीच में यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मूल जो उपाय हम सोच रहे हैं वही गलत है। ये सब बड़े बड़े बंद बनाकर सोचना कि हम ऐसे सब यांत्रिक सुविधाओं से हम ये अन्न के अभाव का या सूखे का हम उपाय निकाल सकते हैं, ये हमारी गलती है। क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं और यज्ञ न करने की वजह से वर्षा ठीक ठाक नहीं हो रही है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी वर्षा मूसलधार वर्षा होती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये उतार चढ़ाव जो है इसका मूल कारण क्या है हम नहीं जानते, इसलिए बड़े बड़े बंद बनाते हैं। और फिर इन बंद बनाने से क्या होता है कि पहली बात तो जो तकलीफ होती है आगे पीछे वो तो है ही, साथ साथ इतना जो जमीन है वो पानी के नीचे आ जाता है। वैसे ही हजारों सालों से हम देखते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। अभी आजकल वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि पृथ्वी के बिल्कुल उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में जहां बर्फ है वो बर्फ अभी धीरे धीरे से पिघल रहे हैं क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि हम प्रदूषण इतना उत्पादन कर रहे हैं पृथ्वी लोक के ऊपर। केवल ये भी 10-50 साल की बात है कि इस प्रदूषण की वजह से जो सूरज की उष्णता आती है वो यहां से बाहर वापस नहीं जा सकती और इसलिए ये सारी उष्णता बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जो बर्फ है पृथ्वी के बिल्कुल उत्तर और दक्षिण में वो पिघलते जा रही है। हम इसका अनुभव कर रहे हैं कि पहले जो ठंडक होती थी वो आजकल नहीं है, वो आजकल ज्यादा गर्मी है। इस साल में भी यहाँ बेलगांव के कई लोग बोल रहे हैं कि गर्मी ज्यादा है बहुत पहले के हिसाब से। इस तरह से गर्मी ज्यादा बढ़ रही है और ऋतु ठीक काल से नहीं आते हैं, वर्षा अपने समय से नहीं आती, गर्मी अपने समय से नहीं आती, ठंडी जितना होना चाहिए उतनी नहीं होती। तो जब बर्फ पिघल जाते हैं तो क्या हो जाता है कि सागर में पानी बढ़ जाता है और सागर में पानी का लेवल जब बढ़ जाता है तो क्या होगा, सारा पानी जमीन पे आ जाता है तो जमीन को पानी पी जाती है। अर्थात ऐसे वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर ये सारे बर्फ पिघल जाएंगे तो बंबई जैसे शहर भी सब पानी के नीचे आ जाएंगे, तो जो भी तट पे शहर वगैरह प्रांत है वो सब पानी के नीचे आ जाएंगे। तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये सब कार्य कर रहे हैं लेकिन इनका मूल कारण क्या नहीं समझते। तो पानी तो वैसे भी बढ़ रहा है और इस तरह से हम बड़े बड़े बंद बनाते हैं और भी जमीन को पानी के नीचे डाल देते हैं। और फिर उन लोगों का क्या जो कि वहां रहते थे पहले, उनको पीढ़ियों से हजारों सालों से वहां रहते आए थे, उनकी संस्कृति है वहां उस भूमि से जुड़ी हुई है, लेकिन उनको वहां से उखाड़ कर कहीं दूसरे जगह ले जाते हैं विकास के नाम पे। जैसे नर्मदा के तट में भी इतने प्राचीन सब स्थान है, जैसे माहिष्मती, जैसे जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आता है, नर्मदा ये तो बहुत पवित्र नदी है और इसको नर्मदा हम नर्मदा माता कहते हैं, माता नर्मदा। तो अर्थात इन इस संस्कृति को भूलकर, इनके धार्मिकता को भूलकर हम केवल भौतिक दृष्टि से आर्थिक विकास के लिए चेष्टा करते हैं और इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से ये बंद बनाना, ये तो एक पद्धति हमने अपनी नई बुद्धि से सोच निकाली है, और दूसरे तरह के जो पद्धतियां हैं वो है यंत्रों के माध्यम से, जैसे ट्रैक्टर इत्यादि। अभी ट्रैक्टर से देखिए कितना नुकसान हो रहा है, जो गहराई में सोचते नहीं है वो इस बात को पहचानते नहीं है कि एक यंत्र ये ट्रैक्टर ने कितना नुकसान किया है। सबसे मूल बात ये है कि ट्रैक्टर अभी वो काम कर रहा है जो कि पहले बैल किया करता था। थोड़े हफ्ते पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि गाय और बैल किस तरह से वैदिक संस्कृति के मूल हैं, बुनियाद है, आधार है। गाय और बैल के बिना मनुष्य जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, ये निश्चित बात है। और हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब गाय या गौ माता की उपेक्षा होती है और गाय के दूध के बजाय हम भैंस का दूध पी लेते हैं तो क्या होता है, इससे हम गौ हत्या को प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जितना डिमांड बढ़ जाता है, जितनी मांग बढ़ जाती है भैंस के दूध के लिए, उतना गाय की आवश्यकता समाज में कम हो जाती है। और इसलिए फिर जब गाय की आवश्यकता कम हो जाती है तो फिर गाय की हत्या हो जाती है, किसान जो भी है फिर गायों को बेच देते हैं और फिर दूध एक व्यवसाय का माध्यम बन जाता है। वैदिक संस्कृति में दूध कभी बेचा नहीं जाता था, लेकिन जब लोग सोचते हैं कि चलो भैंस के दूध में अभी ज्यादा कीमत मिल रही है तो भैंसों को ज्यादा पालें ताकि ज्यादा कीमत मिलेगी, तो ये भी व्यवसाय दृष्टि, व्यवसाय बुद्धि इसमें आ जाती है और इससे लोग गौ माता को भी व्यवसाय की दृष्टि से देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं कि चलो अभी गाय बूढ़ी हो गई है, अभी दूध नहीं दे रही, इसलिए इसको बेच डालो, फिर वो बूचड़ खाने में या कत्ल खाने में जाती है। और ये भी सोचते हैं कि चलो गाय दूध भी दे रही है लेकिन भैंस से इसकी कम कीमत है, इसलिए गाय को बेच डालो, भैंस खरीदो। या तो फिर सोचते हैं कि ये गाय कम दूध देती है, जो विदेशी गाय है, संकरित गाय है, वो ज्यादा दूध देती है, तो इनको संकरित रूप में इन गाय को क्रॉस कर दो। तो इस तरह से ऐसे व्यवसाय बुद्धि आ जाती है तो गौ माता की हत्या होती है। उधर जो कार्य बैल खेतों में करते थे, हल को चलाना और ऐसे कई चीजें, जैसे भारी भारी वजन उठाकर ले जाना, जैसे हम देखते हैं गाड़ियां चलती हैं, बैलगाड़ियां चलती हैं, तो ये कार्यों को अभी ट्रैक्टर करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब बैलों की आवश्यकता कम हो जाती है तो क्या होगा, जिस तरह से जब गायों की आवश्यकता कम होती गई तो गायों की हत्या होती रही, हत्या भी बढ़ रही है, ठीक उसी तरह से जब ट्रैक्टर वगैरह जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, बैलों की हत्या हो जाएगी। तो यह समस्या हो जाएगी गांव में, ये समस्या है कि जो बैल होंगे उनका क्या करें। जब किसी घर में ट्रैक्टर आ जाता है, ट्रैक्टर हर चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर के पीछे कोई ट्रॉली लगा दिया, ट्रॉली में जो भी सामान है वो रख के बाजार में ले गए, बेच दिया। पहले एक गाड़ी में रख के फिर बैल खींच के ले जाता था और बाजार में माल बेचते थे, लेकिन अभी ट्रैक्टर वो काम करता है और हल चलाने का काम भी नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर भी वही काम करता है। तो गाय थोड़े बहुत दूध के लिए रख भी लेते हैं किसान, लेकिन अब उसके घर में, उसके गौशाला में जब गाय किसी एक सांड को पैदा जन्म देता है, देती है, तो उस समय उस सांड का क्या करेंगे, पुरुष, एक पुरुष जो एक बैल है उसको जन्म देंगे, तो फिर आगे क्या करेंगे? सोचेंगे कि इसका ये तो दूध नहीं दे सकता, और इसके लिए ये खेत में तो इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि अभी ट्रैक्टर आ गया, तो क्या करना चाहिए? ये बड़ी समस्या है गांव में। अब सब जगह जाकर देखिए, केवल वो लोग अभी बैल चला रहे हैं जो ट्रैक्टर खरीदने की जिनकी क्षमता नहीं है, बस इसी वजह से बैल अभी तक टिके हुए हैं। जब उनके पास पैसा आ जाएगा वो भी ट्रैक्टर खरीदेंगे और बैल को मार देंगे, और दोनों गाय और बैल जब मर जाएंगे तो क्या होगा? जैसे एक छोटा बच्चा, अगर उसके माता पिता दोनों मर जाएं तो क्या होगा? बेचारा निस्सहाय रह जाएगा, बेसहारा रह जाएगा। उसी तरह से गाय हमारी माता है, बैल हमारे पिता है, और दोनों की हत्या कर दें तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। मार्गदर्शन करने वाले माता पिता नहीं रहे तो जो बच्चे हैं वो गलत मार्ग में चले जाएंगे। ठीक उसी तरह से गो माता और बैल की जब उपेक्षा होती है, उनकी हत्या होती है, तो मनुष्य समाज अवश्य गलत रास्ते पर चले जाएगा। हम थोड़े महीने पहले वृंदावन की यात्रा में गए थे, सारे भक्त, बड़ी संख्या में भक्त लोग थे, आप में से भी कई शायद हुए होंगे उस यात्रा में। तो वहां पर अलग अलग कृष्ण लीला के स्थली में भ्रमण चल रहा था, और कहीं हम सुन रहे थे कि कैसे कृष्ण भगवान ने किसी एक असुर का वध यहाँ पे किया, कहीं और किस तरह से कृष्ण ने और एक राक्षस का वध किया। ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं श्रवण कर रहे थे और उस स्थानों पे जा रहे थे जहां की ये लीलाएं हुई थी, और एक जगह ऐसे जब गए थे तो वहां पर दिखने में आया, गांव में जब वहां बस रोक कर हम जा रहे थे सब उस स्थान की ओर, तो एक भीषण एक यंत्र था, बहुत बड़ी गाड़ी थी, इतनी बड़ी गाड़ी आज तक शायद भक्तों ने नहीं देखी थी। विदेशी यंत्र था ये, विदेशी भाषा में अंग्रेजी में इसको कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर मतलब ये जो है ट्रैक्टर का दादा है। ट्रैक्टर तो उसके सामने कुछ भी नहीं, छोटा सा कुछ यंत्र है। ये कंबाइन हार्वेस्टर मतलब सब कुछ काम कर सकता है, जो ट्रैक्टर का जो 50 ट्रैक्टर कर सकते हैं, वो और भी कोई काम जो ट्रैक्टर नहीं कर सकते ये काम कर सकता है। इतना विशाल है, घोर 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 करके आवाज करता है, और फिर ऐसे उसके दांत है वो जैसे उससे निकालते हैं, तो ऐसे बाहर उसके दांत, पीछे दांत, ऐसे छुरे जैसे बाहर। तो दिखने में तो जैसे ही देखा और आवाज करके, भीषण आवाज करके आ रहा था, गड़गड़ गड़गड़ गड़ करके सारे जगह को हिला रहा था वो मशीन, तो भक्त इधर उधर भाग गए क्योंकि रास्ता कम था, चौड़ाई कम थी, और इतना बड़ा मशीन, इतना लंबा चौड़ा मशीन ऊंचा, तो सभी ने कहा अरे ये तो बड़ा असुर आ गया, और कौन सा राक्षस है ये? तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था, बस हम असुर और राक्षसों की चर्चा करके आ रहे थे कि कृष्ण भगवान ने कैसे बड़े बड़े असुरों का वध किया, और असुर कितने लंबे चौड़े थे, और वृंदावन में ही हम देख रहे थे कि अभी और एक असुर यहां आ गया। वास्तव में सही है ये एक कोई नया असुर, नया राक्षस है, और केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना से ऐसे असुरों का वध करना है बस। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके उन चीजों को तोड़ दें, लेकिन कृष्ण भक्ति या गीता भागवत के ज्ञान का प्रचार करके लोगों को समझाएं कि केवल ऐसे बड़े बड़े यंत्रों को लाकर विकास नहीं होने वाला है, खेती बढ़ेगी नहीं, दीर्घ दृष्टि से देखा जाए तो हानि ही होगी मनुष्य समाज में। इसलिए प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि केवल मनुष्य समाज को ये नहीं समझना चाहिए कि यंत्रों को बढ़ाने से अन्न उत्पादन बढ़ जाएगा और हम खुश हो जाएंगे, नहीं। जितने भी बड़े बड़े असुरी यंत्र हम लाएंगे, उग्र कर्म करेंगे, पृथ्वी माता को कष्ट देंगे, उतना ही वास्तव में पृथ्वी माता अपने भीतर इन बीजों को छुपा देगी। लेकिन अगर हम यज्ञ करेंगे, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करेंगे, और पृथ्वी माता जो भी सामग्री देती हैं, पदार्थ देती हैं, उनका उपभोग किए बगैर अगर यज्ञ में इनका प्रयोग करेंगे, तो फिर पृथ्वी माता प्रचुर मात्रा में सब कुछ हमें प्रदान कर देंगे। तो इसलिए चाहे वो बड़े बड़े बंद हों, चाहे वो ट्रैक्टर हों या कंबाइंड हार्वेस्टर हों, या चाहे रसायन पदार्थ खाद हो। रासायनिक खाद से भी हम देखते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है, और बेचारा किसान मासूम है उसको भी बहका दिया जा रहा है, उसको भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सारे बड़े बड़े कंपनी जो हैं आके उसके सामने, और सरकार भी खामखा लालच उनके सामने रखती है कि देखो ये रासायनिक खाद का प्रयोग करोगे तो 10 गुना उत्पादन बढ़ जाएगा, 20 गुना उत्पादन बढ़ जाएगा। तो सारे किसानों के मन में लालसा, लोभ की भावना जागृत कर रहे हैं, भौतिकवाद की भावना, भोग की भावना। इसलिए ये सारे डेयरी बिजनेस या व्यवसाय है, और ये जो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल व्यवसाय की दृष्टि से जी गई है, इससे सब कुछ बहुत सूक्ष्म दृष्टि से भी हम देखते हैं कि लोगों की चेतना खराब हो रही है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है, भक्ति भावना नष्ट हो रही है। क्योंकि जब लोगों के सामने ऐसे सब भौतिक प्रलोभन रखे जाते हैं, ऐसे टंगे जाते हैं, तो फिर वो अपने संस्कृति को भूल जाते हैं, चलते हैं चलो यही सब कुछ है। तो इस तरह से ये ट्रैक्टर बंद और रासायनिक खाद इत्यादि, इनके पीछे जो सिद्धांत है और इनका परिणाम क्या सूक्ष्म दृष्टि से और स्थूल दृष्टि से होता है, इनको गहराई में सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न सरकार के प्रतिनिधि सोचते हैं, न जो अर्थवादी लोग हैं वो सोचते हैं, इकोनॉमिस्ट, न वैज्ञानिक सोचते हैं, न किसान सोचते हैं। क्योंकि कलयुग के प्रभाव से सबकी बुद्धि अभी मंद हो गई है, और मंद बुद्धि होने की वजह से दृष्टि भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुताः। कलयुग के लोग क्या होंगे, बहुत कम उम्र जिएंगे, बहुत उपद्रव की अवस्था में रहेंगे, विचलित रहेंगे हमेशा, कभी शांत नहीं रहेंगे, और आपस में झगड़े करते रहेंगे, और आलसी रहेंगे, खास करके आध्यात्मिक दृष्टि से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कलयुग की बुद्धि का प्रयोग करके हम कितना अपने आप के ऊपर नुकसान हम ले रहे हैं, अपने आप को नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का नुकसान भी कर रहे हैं। इसलिए उसका मूल उपाय एक ही है कि जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, यज्ञ प्रचुर मात्रा में कैसे करना, पहले तो प्रसाद का वितरण करना और हरि नाम का संकीर्तन करना। ये दो चीजें अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो फिर भगवान संतुष्ट होंगे और किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताया करते थे कि संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं है, कमी अगर है तो केवल एक चीज की, वो है कृष्ण भावना की, कृष्ण भक्ति की। और अगर लोग कृष्ण भक्ति करेंगे तो फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। तो यही हमारे मूल समाधान है। सभी लोगों को कृष्ण भक्ति करना चाहिए, और कृष्ण भक्ति करके कृष्ण भगवान की जो संपत्ति है उनको अर्पण करके प्रसाद रूप में हर एक वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो अन्न हो, जड़ी बूटियां हो, वनस्पति हो, जो भी कुछ हो। इस तरह से हमारा जीवन सुखी और सफल बन सकता है, अन्यथा हम चोर कहलाएंगे, और जैसे प्रभुपाद समझाते हैं हम दंडनीय रहेंगे, और प्रकृति के कड़क नियमों के हाथों में हमें दंड स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सभी को चाहिए कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपना जीवन सुखी बनाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।